अब एक और चीज पे गौर करेंगे और वो क्या है, कश्तियां। कभी बैठे पानी की कश्तियों में, बहरी जहाजों में? अब थोड़ा सा इस पे गौर करके देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा। व आयत लहुमुल लैल के बाद आयत नंबर 41, व आयत लहुमन्नाहमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून। इनके लिए ये भी एक निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया। फिर इनके लिए वैसी ही कश्तियां और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये ना बचाए जा सके। बस हमारी रहमत ही जो इन्हें पार लगाती और एक वक्त खास तक जिंदगी से फायदा उठाने का मौका देती है। देखिए, एक सुई समंदर क्या दरिया के पानी पे रखें, अंदर डूब जाएगी। स्विमिंग पूल में जाके आजमा लीजिए, पानी का एक टब भरें, टब में पानी भरें, उसमें रखिए, एक सुई डूब जाती है, इतना बड़ा जहाज क्यों नहीं डूबता? ये सोच थी जो अर्शमीदस ने दी थी, अगर आपने उसका नाम सुना है, जिससे उसने बहरी जहाज, बहरी सफर को डिस्कवर किया था कि एक छोटी सी सुई क्यों डूबती है, बड़ा जहाज क्यों नहीं डूबता। और एक और चीज आपने फील की होगी, छोटी कश्ती में बैठे तो हचकोले, हिलते जुलते, बड़े जहाज में बैठे अंदर जाके पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। और जितना बड़ा जहाज है उतना सिक्योर है। आप फिजाओं में जाकर देखिए, छोटे जहाज खतरनाक होते हैं, फोकर अक्सर ही गिरते हैं, अल्लाह बचा के रखे। छोटी फ्लाइट्स में खतरा ज्यादा है, बड़ा जहाज आप कहते हैं नहीं, जहाज जम्बू जेट है, ये ठीक होगा, ये अल्लाह ने सिखाया है। कभी इन डोलती हुई कश्तियों पे बैठकर सोचा तुमने, कौन तुम्हें पानी में डूबने से बचाता है? और चाहे तो किसी को डुबो दे और किसी को तार दे। नूह की कश्ती टूटी फूटी, बिल्कुल बेसिक लेवल की बच गई, और बड़ा सा टाइटैनिक डूब गया। किसने डुबोया टाइटैनिक को? उनके उस तकब्बुर ने डुबोया कि इसको तो गॉड भी नहीं गिरा सकता, उनके लफ्ज रिकॉर्ड पे मौजूद है। जब वो जहाज चला था तो उनके बनाने चलाने वालों ने दावा किया था कि ये इतना सिक्योर जहाज है, इसको तो गॉड भी नहीं डुबो सकता। गॉड ने ऐसा डुबोया, कई सालों के बाद डिस्कवर कराया और वो लोगों के लिए एक इबरत बन गया। और जरा ये बात भी तो सोचिए कि उनकी फरियाद सुनने वाला भी कोई ना रहा। अल्लाह ना करे कि कोई बहरी जहाज डूबे, चीखें चिल्लाएं पुकारें, कहाँ तक जाती है आवाज? है कोई दूर दूर जो उनकी आवाज सुने? और जब हवाई जहाज गिरते हैं, कौन सुनता है उनकी पुकारों को? वो सारे गैजेट, वो सारी मशीनें और रिकॉर्डर भी जल के राख हो जाते हैं जिसमें ये आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। आपकी मेरी बस ये औकात है, जीने चाहें तो कैसे जिए, जाने का वक्त आ जाए कैसे ले जाए, सब कुछ उसका है। करो क्या, एक खास वक्त तक की जिंदगी से फायदा उठाओ। पारे के अंदर जो थीम हमने कवर करना है ना, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अरबी में कह दे अल आन, अभी, राइट अवे। आप और मैं अगर अपनी जिंदगी के हर दिन को ये सोचें, यही है वो एक लम्हा जिसमें जन्नत की तरफ जा सकती हूँ, जहन्नुम से बच सकती हूँ, यही है वो लम्हा जिसमें मैं अपने हिस्से का काम कर सकती हूँ, तो फिर जो हमारा टाइम वेस्टर है ना, तसाहुल, टालम मटोल, डिलेइंग टैक्टिस, अच्छा अभी कर लेती हूँ, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा जरा बड़ी हो लो, अच्छा जरा बच्चे बड़े हो जाएं, अच्छा वो हो जाए, लोग क्या कहते हैं, बस अभी नहीं, जरा अच्छे हालात हो जाएंगे ना फिर हम खूब नेकियां करेंगे। अभी नहीं दे सकते सदका खैरात, जरा अच्छा सदका हो जाएगा पैसा फिर देंगे। अभी नहीं नमाज का वक्त, अभी मसरूफ बहुत है, जरा से फारिग हो जाए फिर नमाजों के लिए दुकान बंद कर दिया करेंगे। याद रखिए, नहीं, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जिंदगी का असूल बनाए। यही अल्लाह ताला आपको मुझे इस आयत में मैसेज दे रहे हैं कि ये है वो लम्हा जो जिंदगी से फायदा उठाने के लिए तुम्हें दिया जाता है। फिर फरमाए, लोगों से जब कहा जाता है कि बच्चों इस इंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद के तुम पर रहम किया जाए, तो ये सुनी अनसुनी कर देते हैं। जरा सा गौर करें, जब दिल में हिदायत की तलब नहीं होती ना, तो ना माँ की बात अच्छी लगती है, ना बीवी की, ना शौहर की, ना बाप की। क्यों? हम कहते हैं छोड़े, आप तो ऐसे, आप हर वक्त बोलती रहती हैं, आप तो हर वक्त कहती हैं, आपको तो कोई और काम ही नहीं है। इनके सामने इनके रब की आयात में से जो आयत भी आती है, ये इसकी तरफ मुंह भी नहीं करते, इल्तफात ही नहीं करते, यानी जस्ट इग्नोर करते दिखते, और इनको फिक्र ही नहीं होती किसी चीज की। और और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको अता किया है इसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफर किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम इनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो, क्या पता चला, ना करने के 100 बहाने। जिसको कोई काम नहीं करना होता ना, एक उजर से निकाले तो दूसरे में, दूसरे उजर को दूर करें तो तीसरे में। ये सारी बातें ये बताती हैं कि अभी जिंदगी की इस दौलत की कदर नहीं आई। देखिए अब सिर्फ 9-10 दिन रह गए हमारे इस रमजान में, अल्लाह को पता कितने दिन है, चला गया ना ये जाता हुआ रमजान। हमें क्या पैगाम दे रहा है कि एक दिन आखिरी दिन आएगा रोजे का, पैगाम क्या है? इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी जा रही है। देखिए अमूमन रमजान के 3 अशरे हैं ना, 10-10 दिन का या 10-10 और 9 दिन का। हमारी जिंदगी के भी 3 ही अशरे हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कोई बचपन में उठा लिया जाता तो पहले अशरे में चला गया, किसी को जवानी में उठाया गया तो दूसरे अशरे में चला गया, और किसी को अगर बुढ़ापे का मिला तो कोई जरूरी नहीं कि पूरा अशरा हो, कोई बुढ़ापे के शुरू में, कोई आखिर में, कोई इधर उधर जाता है। आपके मेरे हाथ में क्या है? ऐलान आज इस वक्त, जब जिंदगी में नेकी का मौका है खुद से कहें ये है वो मौका जिस पे मुझे अल्लाह ने बख्शना है, ये है वो नेकी जिसको छोड़ूंगी तो मैं महरूम रह जाऊंगी, और जब कोई गुनाह का मौका आए तो सोचे ये है वो जहन गुनाह जिसने मुझे जहन्नुम में भिगवाना है, ये है वो जिसने मुझे कंथरा पे रोकना है, ये है वो चीज जिसने मुझे एक डुबकी तो जहन्नुम की लगवानी है। इस तरह अपने से बात करें, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फायदा होगा। इसीलिए आगे क्यामत की निशानी का जिक्र है। ये लोग कहते हैं ये क्यामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी, बताओ अगर तुम सच्चे हो, यानी सवाल लेने वाले से, सवाल पूछने वाले से अब खुद ही जवाब मांगने लगे, यानी ऐसे कि कोई इम्तिहान लेने के लिए जो आए उसी का इम्तिहान लेने लग जाए, तैयारी है कोई नहीं, इरादा है कोई नहीं, नीयत है कोई नहीं, और कहते क्या अच्छा जरा बताओ ये कब आएगी और ये कैसे होगी। दरअसल ये जिस चीज की राह तक रहे हैं वो बस एक धमाका है, सूर की तरफ इशारा है, यकायक इन्हें इस हालत में धर लेगा जब ये अपने दुनियावी मामलात में झगड़ रहे होंगे। क्यामत इतनी अचानक आएगी, हदीस में आता है कि कपड़ा लेने और देने वाला अभी सौदा कर रहा है, क्यामत आ जाएगी। कोई शख्स अपने घोड़े का हौज लेप रहा होगा, सबसे पहले क्यामत का धमाका वो सुनेगा, और इस वक्त वो वसीयत तक ना कर सकेंगे, ना अपने घरों को पलट सकेंगे। फिर एक सूर फूका जाएगा और यकायक अपने रब के हजूर पेश होने के लिए अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे, घबरा कर कहेंगे अरे ये किसने हमें हमारी ख्वाबगाह से उठा दिया। ये वही चीज है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी, एक ही जोर की आवाज होगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। आज किसी पर जर्रा बराबर जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम अमल करते रहे थे। ये है क्यामत। सारी जिंदगी जिसको झुटलाते रहे वो आ गई। वो बच्चा जो ना पढ़े ये सोच करके कोई नहीं होना इम्तिहान, और जब इम्तिहान होने लग जाए उस वक्त उसकी कैफियत क्या होगी। देखिए क्यामत वैसे ही बड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन उनके लिए जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे उसको, उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। तालिब इल्म हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, ट्यूशंस पढ़ते हैं, गैस पेपर ढूंढते हैं, फिर भी कमरे इम्तिहान में परेशान होते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने इनमें से कुछ भी नहीं किया उसके लिए वो 3 घंटे क्या 3 सालों के बराबर नहीं होंगे, और उसका नतीजा उसको तबाह और बर्बाद करने की सूरत में नहीं होगा। असल बात यह है कि क्यामत का यकीन ही नहीं है। असल बात है कि लोग ये सोचते ही नहीं है कि हमसे पूछा जाएगा। यकीन करें मैं बदगुमानी नहीं करती, लेकिन हमारे कल्चर में मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही गुमान रखे बैठे हैं कुछ नहीं होना, अल्लाह को हंस के दिखा देंगे, अल्लाह के ऊपर जरा कोई रोब डाल देंगे, वो फलां का नाम पेश कर देंगे, पर्ची सिस्टम चलता है। कल मुझे कोई बता रहा था कि किसी इंग्लिश स्पीकर ने हम पाकिस्तानियों के ऊपर जबरदस्त तनकीद की है, और मैंने भी उनके कुछ लेक्चर सुने हैं, वो पाकिस्तान जा चुके हैं चक्कर लगाए। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के लोग किस किस्म के मुसलमान हैं, ना हमारा पर्दा पूरा, देख लीजिए पर्दा पूरा से समझते हैं ना, ना हमारी नमाजें पूरी हैं, ना हमारा लाइफस्टाइल पूरा है, और ना हमारे अखलाकियात पूरे हैं। यानी आप देखिए ना कि कुछ समझ तो आती है ना बात। मतलब आप देखिए, सिर्फ नाम पाकिस्तान का लिया है तो मैं उन्हीं की बात पेश कर रही हूँ कि आप देखिए लफ्ज अरब बोले आप, तो अरब कुछ भी करें लेकिन नमाज तो पढ़ते हैं ना 5 वक्त। कोई होगा इल्ला माशाल्लाह जिसका अल्लाह ने जिक्र कुरान में कर दिया, लेकिन 5 वक्त की नमाजें पक्की हैं उनकी। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि इनकी नमाजों पर ही अल्लाह ने इनको इतना नवाजा हुआ है। इनकी मस्जिदों को जाकर देखें, जमात का अहतमाम देखिए, खुतबा देखिए, हमारी तो नमाजें भी पूरी नहीं। यानी अगर एक मुसलमान को खड़ा कर दिया जाए, इसको जरा A to Z चेक करो, तो बहुत कम होंगे जिनकी हर चीज पूरी निकले। कोई एक तरफ झुका हुआ है तो कोई दूसरी तरफ झुका हुआ है, किसी में एक कमी है कमी है। और हम मुतमईन है कुछ नहीं होना, ऐसे ही होगा, देखना ये ऐसे ही बात कर रहे हैं। शायद मैं सोचती हूँ कि हमारे कल्चर के लोग बेसिकली भोले लोग हैं, यानी मैं इसको बुरा नहीं कहती, भूले हुए तो हैं, भोले हैं, बहुत लीनियट है, इजी गोइंग है, फॉरेन लोगों के लिए अपने प्लान्स चेंज कर देते हैं। वो नहीं है जिसको कहना चाहिए कि जमे हुए, इसलिए हमने आखिरत के लिए भी सोचा भाई आई आई ना आई ना सही, देख लेंगे क्या होगा। अल्लाह कहते हैं आनी है और आएगी। और ये जो जुमला है कि देखा जाएगा, जरा सोचिए देखा जाए कहाँ कहाँ भुगतेगा, जब जान निकले किस वक्त देखेंगे, जब रूह का बंद खुलेगा उस वक्त देखेंगे, जब गर्म पानी से बेरी के पत्तों से धुलाएंगे तब देखेंगे। आपने वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा क्लिप है, कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन इंतहा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बातें उन्होंने की हैं कि जब कब्र में उतारे जाओगे तब देखा जाएगा, जब सांप लिपटेंगे तब देखा जाएगा, जब आग में घुसाए जाओगे तब देखा जाएगा। तुम बताओ तुम किस खुशफहमी में जी रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें जिंदगी में करने के लिए क्या भेजा था और तुम करके क्या आगे। और आप देखिए अल्लाह कहता है कश्तियों को मैं तारता हूं, हम कहते हैं कर दे बेड़ा पार मेरा फुलाना फुलाना फुलाना। कवालियां देखिए, शेर देखिए, कब्रों पे बैठे लोग कहते हैं मेरा बेड़ा पार तो किसी अली ने करना है या किसी अजवेरी ने करना है। फिर हम मुतमईन हैं, फिर हम कहते हैं काम ही कोई नहीं है, ही कोई नहीं, शौक ही कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि इसराफील यानी फरिश्ते जिनको अल्लाह ने सूर फूकने का काम दिया, वो सूर का लुकमा बनाए हुए हैं। जैसे ये देखिए आप इसको सोचिए, अब ये मैं बोली है ना, ये मेरे आगे है, वो कहते हैं इस माइक को हाथ में पकड़ के खड़े हैं, जब अल्लाह ताला ने कहना है कुन तो इन्होंने इसमें फूंक देना और पूरी दुनिया के पड़हच्चे उड़ जाने हैं। आपने फरमाया मैं कैसे आराम करूं क्योंकि इसराफील ने सूर को हाथ में पकड़ा हुआ है। आज हम कैसे नाफरमानी करते हैं, कितने इंजॉय करते हैं, इतने सख्त मरहले आने वाले हैं क्यामत के। आज जिंदगी में अगर उसकी खबर मिल जाए हम परेशान हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों जो मैं जानता हूं कल जो होने वाला है, अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम हंसना छोड़ दो, तुम बिस्तरों पे अपनी बीवियों से लज्जत लेना छोड़ दो, तुम अपने मुर्दों को कब्रों में दफनाना छोड़ दो अगर तुम्हें पता चले कि कब्रों में क्या आजमाइशें होती हैं। लेकिन जब दुनिया की गफलत का पर्दा मोटे से मोटा होता है कहते हैं देखा जाएगा। आज की फिक्र करो, हराम है कोई बात नहीं, नाजायज है कोई बात नहीं, नहीं अच्छा कोई बात नहीं, घर तो सज जाएगा, घर तो बन जाएगा। यानी मोटे मोटे गुनाह करके बंदा डरता नहीं, क्यों, क्यामत की फिक्र नहीं। ग़ालिबन हज़रत अनस की रिवायत है, वो कहते हैं लोगो वो गुनाह जिसके बारे में हम ऐसे सोचते थे कि ये गुनाह नहीं है, ये एक पहाड़ है जो हमारे सर पे मुसल्लत होगा, अगर हमने वो गुनाह किया तो हमारे सर पे गिर जाएगा, लेकिन आज तुम लोग उसको करते हो और नाक पे मक्खी की तरह उड़ा देते हो। और ये कब की बात की उन्होंने, सहाबा का आखिरी दौर होगा, ताबईन शायद कुछ आगे होंगे, और आज 1400 साल के बाद के मुसलमानों को देखकर इमेजिनेशन में तो लाइए जरा, ये 4-6 बड़े सहाबा अशरे मुबशरे ही आ जाए दुनिया में तो क्या फिर वो कमेंट्स देंगे आज के ओवरऑल मुसलमान पे। फिर लोग चाहे उनको जजमेंटल कहें, लोग उनको बड़े पिकी कहें, लोग उनको जो मर्जी कहें, लेकिन बात ये सच है। तो कीजिए क्या, अलान आज टुडे I will do my best। आज की कदर कर लें कल आपका खूबसूरत हो जाएगा। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कदर की, जिन्होंने अपने वक्त को बहुत खूबसूरत गुजारा, आप देखिए अब अल्लाह ताला उनकी तारीफें भी फरमा रहे हैं। और वो कैसे फरमाया, आज जन्नती लोग मजे करने में मशगूल हैं, वो और इनकी बीवियां घने सायों में हैं, मसंदों पर तकिए लगाए हुए, हर किस्म की लजीज चीजें इनको खाने को दी जा रही हैं और वो वहां मौजूद हैं, और जो कुछ वो तलब करेंगे उनके लिए हाजिर है, और सबसे बढ़ के सलाम उन कौलम रब्बे रहीम की तरफ से इनको सलाम कहा गया। ये जन्नत की नेमतें लेनी है। किसी ने कहा कि अद दुनिया यौमन, दुनिया एक दिन की है, वलना फी ही सौमन, और हमारा इस दिन में रोजा। आज दुनिया में जिसने गुनाहों से रोजा रखा, बद तहजीबी से रोजा रखा, शिर्क से रोजा रखा, बिदत से रोजा रखा, सुस्ती से रोजा रखा, टालम मटोल से रोजा रखा, उसकी आखिरत ईद के दिन की तरह होगी। इस पे एक हमारा लेक्चर है सौमे रमजान बुक में से, आपको भेजा जा सकता है। बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल है, 15-20 मिनट की मेरा हल ऑडियो होगी कि ये दुनिया यानी रमजान और ईद के दिन में तकाबुल किया गया। रमजान के 29-30 रोजे रखकर ईद का दिन बिल्कुल ही फर्क होता है। इसमें घंटों के एतबार से फारिग रहते हैं, भूखे रहते हैं, उसमें घंटों घंटों खाते ही रहते हैं। तो उन्होंने ये पेश किया जो राइटर है, वो कहते हैं कि मोमिन के लिए ये दुनिया रमजान है और आखिरत उसकी ईद होगी। बीवियों की बात, लज्जतों की बात, क्योंकि दुनिया में बाज दफा इन रिश्तों को बंदा उस तरह टाइम नहीं दे पाता, उस तरह उनके तकाजे नहीं पूरे कर पाता, क्योंकि अल्लाह के दीन के तकाजे सामने आते हैं। कोई बात नहीं, जन्नत में और होगा क्या। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जन्नती जन्नत में जब अपनी बीवी के साथ होगा तो उनके इर्द गिर्द पर्दे लगा दिए जाएंगे, क्योंकि वहां रात नहीं है, वहां नींद नहीं है, वहां मौत नहीं है। और जन्नती जब अपनी बीवी के पास जाएगा, उसको लगेगा ये मेरी बीवी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। दुनिया में भी तो कंटेंट थे ना, दुनिया में भी तो इधर उधर ताका झांकी नहीं थी, दुनिया में भी को 20 साल बाद भी तो दूसरी शादियां और दूसरी बीवियों के ताने नहीं मिलते देते थे। तो जो पाक मियां बीवी होंगे जन्नत में भी, अल्लाह ताला कहते हैं वो मजे में होंगे। देखिए जन्नती लोगों के मजे और वो और उनकी बीवियां, और किसी रिश्ते का जिक्र नहीं है। क्यों? कि ये फितरत की पुकार है कि जब एक इंसान अल्लाह के हुक्म पर चलता है और उसकी जिंदगी में अल्लाह की फरमा बरदारी आती है, तो सबसे ज्यादा मुतासिर उसका शौहर या उसकी बीवी होती है। क्योंकि हम बाकियों को तो इतना वक्त भी नहीं देते। हर वक्त कौन जाके माँ बाप के पास बैठता है, हर वक्त कौन भाई बहनों के पास जाता है। तो बात क्या पता चली कि जो किया था अल्लाह ने उसको पलटा दिया। आज थोड़ी सी सब्र कर लीजिए, अपने जज्बात पे कुर्बानी दे दीजिए, थोड़ा सा अपने एक दूसरे को समझा बुझा लें। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वो वहां तकिए लगाए बैठे होंगे, खा रहे हैं पी रहे हैं, और आसमान से आवाज आ रहा है सलामुन कौलम रब्बे रहीम। अल्लाह ताला हमारे कानों को भी ये आवाज सुनाए और हम इसमें रहें, और अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे इस दुनिया में अल्लाह के हुक्मों पे चलने की। इसके बरक्स तस्वीर का दूसरा रुख, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमो आज तुम छट कर अलग हो जाओ। क्लासिफिकेशन हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगी वहां जाकर। आज दुनिया में एक ही घर में एक नमाजी तो दूसरा बेनमाजी, एक मुत्तकी दूसरा फासिक, लेकिन रिश्ते हैं खून के हैं, कभी सहर के हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं। अल्लाह वहां सबको खुला मिला नहीं छोड़ेगा, चलो अलग हो जाओ। क्योंकि दुनिया में आप देखिए कि ज्यादा अच्छों में थोड़े अच्छे भी चल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन अच्छा ज्यादा था कौन कम। वहां हर बंदा अपनी अदालत में खड़ा होगा, मेरा अपना कैरियर क्या है, मैं खुद क्या हूं, मेरे लिए वो काफी है। दुनिया में आप देखिए माँ बाप का नाम मिल जाता है, इज्जत मिल जाती है, कभी शौहर का मिलता है, कभी नाना आलिम थे उन आलिम की नवासी आप कहला लिया, कोई आपको किसी और रिश्ते की मोहब्बत से पुकारता है। क्यामत के दिन इनफिरादी हिसाब, इज्तमाई मुहासबा तो है ही, इनफिरादी हिसाब होगा। आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी कि शैतान की बंदगी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है। इसके बावजूद इसने तुम में से गिरोह कसीर को गुमराह कर दिया, क्या तुम अकल नहीं रखते थे, ये वही जहन्नुम है जिससे तुमको डराया जाता रहा था। जो कुफर तुम दुनिया में करते रहे इसकी पादाश में अब इसका ईंधन बनो। कौन कहता है कि मैं शैतान की बंदगी करता हूं? कभी आपने किसी से ये सुना कि दो नफिल पढ़ने वास्ते शैतान के, करती हूँ रुख शैतान की तरफ? कभी नहीं करता। हैं चंद महरूम लोग जिन्होंने सैतैनिक वर्सेस और शैतान के डेवल डिसेपर्स के नाम पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अमेरिका के एक स्टेट के अंदर एक जगह है कि जहां वाकई डेवल को पूजते हैं, उन्होंने उनकी जो इबादत खाने उसमें डेवल की शबीहें बनाई हुई हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ये कौन सी फिर बंदगी है? लिखिए, बंदगी बमाना इतात। इतात तो बंदगी की इंतहा होती है। ये जाहिरी रिचुअल्स तो आपको मुझे इताअत तक ले जाते हैं। हाथ पांव जैसे शैतान के रास्ते में लगाए थे, ये सब शैतान की बंदगी में आ गए, अब रहमान के रास्तों में लगाओ। इस जिस्म को शैतान की बातें मान मान कर मोटा किया था, इसको अल्लाह के रास्तों में खुलाओ, पीछे करो। और बात यह है कि एक इंसान जब अल्लाह का बनता है तो सबसे बड़ा इम्तिहान ही ये है कि वो शैतान को पीछे करे। अब ये जो जिस्म है हमारा, क़यामत के दिन देखिए हमारे खिलाफ गवाहियाँ दे रहा है कैसे, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, आज हम इनके मुंह बंद किए देते हैं, इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पाँव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे। जरा देखिए अपने अपने हाथों को, दोनों तरफ से देखें, कल ये गवाही देंगे। ये स्कैनर्स हैं, ये स्कैन करें मेरी आपकी हर चीज। आप देखिए हथेली ना, इसको सफ कहते हैं अरबी में, ये जो होता है, तो ये सफा ही है, इस पे सब कुछ लिखा जा रहा है। और आज इस चीज को साबित कर दिया गया कि हमारी स्किन इज द बेस्ट रिसेप्टर। ये मैं बोल रही हूँ ना, आप सुन रहे हैं, कई रिकॉर्डर ट्राई कर रहे होंगे, कई जगह आवाज कई मीडियम से जा रही होगी, पर सबसे ज्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग मेरी स्किन में हो रही है। और क़यामत के दिन अल्लाह बस एक प्ले का बटन दबाएंगे, मेरे हाथ, मेरे पाँव और मेरे अज़ाब बोलेंगे कि ये क्या करती थी और क्या नहीं करती थी। आप देखिए कभी आप अपने ही बच्चे को बोलता देखें किसी महफिल में आपके खिलाफ, तो सर शर्म से झुक जाता है, क्या बनेगा उस दिन। और वह हदीस पीछे आपको मैंने सुनाई थी कि क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह मैं अपने मामले में किसी गवाह की गवाही नहीं मानता, मुझे तो अपने गवाह पेश करने दे। कहा अच्छा चल कर ले। फिर जब उसके अपने गवाह आएंगे, हाथ पांव आएंगे, तो उसके खिलाफ बोलेंगे। आगे सूरत हामिम सजदा में तो आयत ही बड़ी खूबसूरत आ रही है, तो जब वो हाथ पांव बोलेंगे तो उसके खिलाफ बोलेंगे, तो वो कहेगा अरे बदबख्तो, तुम्हें जहन्नुम से बचाने के लिए तो मैं झूठ बोल रहा था, तुम क्यों सच बोल रहे हो। तो वहां पढ़ेंगे कि हमें उस जात ने बुलाया जिसने दुनिया में हर चीज को बुलाया था। तो याद रखिए कि आसान नहीं है। और जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, यहीं बोलने लग जाए क्या बने। हम शादी में गए, घर में खूब बदतमीजी कर कर आए, किसी से किसी पे हाथ उठाया, शादी वाले हॉल में सबके सामने हाथ बोलने लगे, ये यहाँ आने से पहले अपनी मासी को डांट के आई है, ये अपने बच्चों पे चीख चिंगाड़ के आई है, ये अपने शौहर के साथ बदतमीजी से बोल के आई है, रहेगी ये इज्जत जो हमारी बनी हुई है थोड़ी बहुत। तो अल्लाह ने हम पे रहम किया है, हम चाहें तो इनकी आंखें मूंद दें, फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखें, कहाँ से इनको रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो इन्हें इनकी जगह पर ही इस तरह मसख कर दें कि ये ना आगे चल सकें ना पीछे पलट सकें। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं, इसकी साख्त को हम उलट देते हैं, क्या ये हालात देखकर भी इनको अक्ल नहीं आती। अल्लाहु अकबर। आप इमेजिनेशन में लाइए, चेहरा है यानी फेस है, फीचर्स नहीं है, आंखें खत्म, बिल्कुल आंखों की जगह प्लेन स्पॉट, होंठ हैं लेकिन बिल्कुल प्लेन। अल्लाह ने ये बात कही है, एक एक तुम्हारा उस तोड़ के फेंक दूं, तुम मेरे आगे नहीं बोल सकते। कभी ऐसा कोई डिफॉर्म्ड बच्चा पैदा हुआ, आप देखें, एक तस्वीर किसी ने एक दफा शेयर की थी, एक आंख थी बच्चे की और वो भी बिल्कुल माथे में, और इधर बिल्कुल प्लेन था, जैसे बिल्कुल प्लेन कागज होता है, देख के खौफ आ रहा था कि आप और मैं ऐसे नहीं है। और अल्लाह कैसे लोगों को पलट के रख देता है। आप देखिए पूरी पूरी बस्तियां पलटाई गई, इटली का एक शहर है पोम्पेई, उसके अंदर एक बड़ी कहना चाहिए कि ऐश और कोश वाली बस्ती थी, जिसको आज के दौर में आप कई नामों औरों से भी देख सकते हैं कि लोग वहां जाते ही सिर्फ जुआ और जिना और बदकारियों के लिए थे। ऐसा जलजला आया, अल्लाह ने उनके ऊपर वल्कानों फेंका जो लावा होता है, जिस शक्ल में वो लोग थे वहीं प्रिजर्व हो गए। लमसखना, ये जो अल्लाह ने तआला ने यह लफ्ज़ बोला है ना, लतमसना अला अयुनिहिम फस्तबिकुल खैर, प्रिजर्व हो गए लोग, जिना करते हुए वहीं पत्थर के बन चुके हैं और वो खुदाई में से अब निकला। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। तो बस बेचैन होना है, परेशान होना है इस बात पे कि हमें डर क्यों नहीं लगता, हमें खौफ क्यों नहीं आता। और ये जो लंबी उम्र की बात की, ये भी को जीना है, जब जीने का लुत्फ खत्म हो जाए। आप देखिए कि जिसको लंबी उम्र मिल भी जाती है वो जीने के काबिल ही नहीं होता। कभी आप अपने घरों के किसी बुजुर्ग को देखें, 80, 90, 100 साल की उम्र है, दबे दबे लफ्जों में लोग भी कहते हैं अब अल्लाह इन पर रहम ही कर दे, अब तो ये अपनी हाजात भी पूरी नहीं करते। यानी जहां से चले थे कमजोरी से, उसी से तुम्हें अल्लाह ने आगे कर दिया, तो करो क्या इस दुनिया में उसके आगे दब जाओ। हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया और ना शायरी इसको जेब ही देती है, ये तो एक नसीहत और साफ पढ़ी जाने वाली किताब, ताकि वो हर उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। क्या ये लोग देखते नहीं, हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से इनके लिए मवेशी पैदा किए। एक और चीज आपके गौर व फिक्र की, और अब ये उसके मालिक हैं। हमने इन्हें इस तरह इनके बस में कर दिया कि इनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का गोश्त खाते हैं और इनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फवायद और मशरूबात हैं। क्या फिर ये शुक्र गुजार नहीं होते? ये सब कुछ होते हुए उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इनकी मदद की जाएगी। ये इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग उल्टे इनके लिए हाजिर बाज लश्कर बने हुए हैं। अच्छा, जो बातें ये बना रहे हैं वो तुम्हें रंजीदा न करें। इनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। मवेशियों की बातें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपके मेरे घर में, कितनी किस्म का दूध है हमारे घर, दूध, मक्खन, चीज, बटर, आइसक्रीम, गिनते जाइए। अपने लिए काम लिखें, आज अपने फ्रिज को खोलें और हर वो चीज़ जो दूध से बनी है ना उसकी लिस्ट बनाएं और फिर इस शिकायत को सोचें। ये सब कुछ मुझे आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन जानवरों ने अल्लाह के दिए हुए फैसलों को कबूल किया। कभी हुआ कि दूध निकालने की कोशिश करें अंदर से पानी निकले, दूध की जगह खून, और जानवर कहते नहीं जी बस खत्म, थक गया दूध दे दे के, कब से तो लगावा अनथक काम कर रही है ये कायनात आपके मेरे लिए, हम थक जाते हैं, थोड़े दिन की बात है। कोई जानवर कभी आपने देखा जो सिर्फ रमजान में ही दूध दे? मैं नहीं करूंगा, 11 महीने दूध नहीं दूंगा। तो ये सबक है, कंटिन्यूस अतात, टोटल सबमिशन और अनथक कोशिशें और अनथक मेहनतें। अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे। क्या इंसान देखता नहीं कि हमने इसे नुतफे से पैदा किया, फिर वो सरीख झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया, अब वो हम पर मिसालें चिस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि ये बोसीदा हो चुकी हो। हर बीमारी का इलाज है, बुढ़ापे का क्या इलाज? कोई इलाज नहीं। यहाँ उस शख्स की बात करके जिसने अल्लाह के इस हुक्म को ना माना, हम सबको सोचने पर मायल कर दिया। और वो क्या है कि उसने तो पानी से हड्डी बना ली थी, बच्चा पानी से बनता है ना, तो आज हड्डी से हड्डी बनाना क्या बड़ी बात है। इससे कहो इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने इन्हें पहले पैदा किया था, और वो तखलीक का हर काम जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम इससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। क्या वो जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया इस चीज पर कादिर नहीं कि इन जैसों को पैदा करे? क्यों नहीं, जबकि वो माहिर खल्लाक है। वो तो जब किसी चीज का इरादा करता है तो इसका काम बस ये है कि इसे हुक्म दे, हो जा और वो हो जाती है। पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज का मुकम्मल इख्तियार है, और इसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। ये है सूरत यासीन का पैगाम। बेहतर है कि खुद पलटने की फिक्र करो ना कि तुम्हें के पलटाया जाए। कभी किसी ने किसी डेड बॉडी को गुसल दिया हो ना, तो उसको पलटाना एक इशू होता है, भारी हो जाती है लाश, सख्त हो जाती है। पलटाने के लिए 2-3 लोगों की हेल्प चाहिए होती है, इधर से इधर, इधर से उधर। अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं कि तुम सोचो। अब आप देखिए, अभी सिर्फ हमने एक तर्जमा ही किया है हल्के फुल्के अंदाज से। अगर लोग 70-72 बार सूरत यासीन को पढ़ने के साथ साथ एक बार इसको गौर व फिक्र से पढ़ और समझ लें, तो क्या जिंदगी में पलटावा ना आए? तिलावत सुनते आखिरी आयतों की, अपना मुहासबा करते हुए।
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
اللہ تعالیٰ میں اپنی طرف پلٹا ہے تو پوری سورت کا پیغام پھر یہی تھا، اور اسی سے آپ نے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے اس قرآن کو پڑھ کے.